और ज्ञानियों का अस्तित्व ही उनको योग की तरफ प्रेरित कर देता है। हवामान में ऐसा फैल जाए तो ज्ञानी जरा तो संकल्प करे तो अमेरिका लंदन उसी समय वहां के लोगों के विचार बदल जाए। बाकी फिर इतना है भूखामरी है वो तो ज्ञानी क्यों ऐसा नहीं करते। अरे दर्द का कारण होता है दृष्टि का खेल भी होता है नियति भी होती है ये अपना अपना अंतर बड़े हैं उनको सही करते वो करते लोग का प्रारंभ होता है उनके द्वारा वो कुछ नहीं करता तुम लोगों का प्रारंभ इधर दर्शन हो तुम लोगों के संकल्प है तुम्हारा पुण्य है इधर से बुलवा रहा है। तो हमारा कोई प्लान नहीं है क्या बोलूं या आवे ऐसा तुम्हारे लोगों के अंदर से संकल्प उतन जब पूरा हो जाता ठीक है पूरा हो जाता ठीक दूसरे मिनट में पूरा हो जाए जब तक अंदर से चालू हो गया अभी चले 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 उसकी बहुमति होगी चलने वालों की बहुमति होगी तो चालू रहेगी चुप वालों की बहुमति हो जाएगी चुप हो जाएगी ऐसा होता है प्लान नहीं होता है कोई विषय पकड़ के नहीं चला जाता कुछ नहीं करो भाई सुनने के लिए क्या करना है पकड़ने के लिए करना है सुनने के लिए क्या करना है मैं कुछ नहीं करो कुछ नहीं करो छूट जाएगा कुछ भी नहीं करो वैसा नहीं आएगा तो फिर उनको देखो बेचारा को देखो तो खुद से जाएंगे देखना भी नहीं आया तो प्राणायाम करो प्राणायाम भी नहीं आया तो कीर्तन करो ऊपर से सबसे साधन कीर्तन भी नहीं आया तो फिर यात्रा करो एकदम थक जाओगे यात्रा कर कर सकते सही तरीका तो है बेचारा को देखतेगा कुछ भी मत करो खाली विचार कुछ भी मत करो होने दो कभी भी विचार काम करो अथवा तो होने को देखते जाते लेकिन कठिन लगता है क्यों किसी गुरु का पल्ला नहीं पकड़ा था अपने मन से करेंगे तो कठिन हो जाता गुरु भी कोई शान पुख से गुरु होता भी नहीं है मन से कोई आदर्श मान लेता तो भी हो जाता मन से मान लेता कोई पकड़ लेता मजे की बात है कि जिनमें देने के पास कुछ है नहीं उनको तो गुरु बनने का कोई शौक है और जिनको गुरु होने का जिनके पास देने को है और जिनको पकड़ के हम पार हो सकते हैं उनको गुरु बनने की कोई पड़ी नहीं है उनको कुछ पड़ी नहीं है संप्रदाय चलाने की पंथ चलाने की गुरु बनने की उनको पड़ी ही नहीं है कहीं विद्यार्थी है तो ज्ञानी नहीं कहीं ज्ञानी है तो विद्यार्थी नहीं कहीं दोनों है तो उत्कंठा नहीं कहीं उत्कंठा है तो लोग मेल नहीं रहने देते ज्ञानी और साधक के बीच में दीवार पर टूटा देते इसीलिए करते किसी सत्य संत के संपर्क में आ जाओगे तुम्हारी निंदा अनिवार्य है तुम्हारा विरोध अनिवार्य जो लोग तुम्हें ले गए थे जो घर वाले तुम्हें बोलते जाओ जाओ तुम जाने लग गए रंग गए वही लोग बोलते थे आपको होते थे देवता लोग देखते ना कि माया से पार हो जाएगा स्वामी हो जाएगा इसलिए कथा कथित मुनि जी सूर नरम मुनि जन की हरि थी स्वार्थ लाभ कर ज्ञानी होता है ज्ञानी मुनि नहीं होता गुरु भी नहीं होता आसुर भी नहीं होता ज्ञानी क्या होता है वो ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म होता है आपका मन परमात्मा में शीतल होता है ना आपके हाथ में जो चीजें उस पर भी असर होती है आपके मन में किसी से कपट करने की रुचि नहीं होती है तो आप जिस चीज को छूते हैं वो चीज किसी कपटे के हाथ में जाए ना तो उस चीज उसको खबरें देखिए कपट ना पड़े संत था, करमंडल और कपड़े लेकर नदी किनारे जाकर बैठते थे शाम की 6 बजे 7 बजे रात का क्या में भी तो बैठा रहता था। कभी कभी नदी के बैठ में घूमने जाते बनास नदी दिशा के तरफ की नदी में वो संत जाते, कोई संत था स्कूल का करमंडल रखते हैं धोती रखते हैं पक्का मक्का उसका बांधिया बांधिया पहुंचे तो निकल जाते बैठ में एक दो मिल गई। शाम को नदी से गुजरने वाला लोग देखता कुछ पड़ा है तो उठाया करमंडल खाए जो की बगल में लगाए करमंडल लेकर जरा चला करमंडल के छूटे नहीं तो छूट रहे कटोरे आज बिजा जो जमाने भी नहीं छोड़े वो 200 रुपये बेचने का करमंडल क्यों पड़े फिर 4 कदम गया फिर 2 कदम आप फिर गया सब छोड़े छोड़ के फिर गया तो आराम से 2-4 दिन के बाद वहाँ से गुजरा तो देखा संत बैठे हैं करमंडल पड़ा बोले बाकी यार समारोह तो बाकी मैं उपाड़ी मुझे तो बहुत हवा मार दी था त्यागी के चीज के वाइब्रेशन होते थे आप इसीलिए संतों के आपके प्रसाद खाते ना तो अपने को भी उस समय संतों के नजीक रहते हैं संतों के आपके प्रसाद खाते तो अपने को भी लगता है कुछ नहीं ये भी कुछ नहीं ये भी कुछ नहीं ये भी कुछ नहीं फिर मूर्खों का आपका ज्यादा खा लेते तो वो दब जाता है ऐसा अनुभव है कि नहीं जगत टीका टीका दिखता है परमात्मा ही सार दिखता है संसार की लगता है अमित जन नारद जी का कैसे हुआ वेदव्यास की पूछा नारद से तुम इतने महान कैसे बने हमको भी तुम्हारी सलाह की जरूरत रहती है मैं भारत पुरुष हूँ अवतार लेकर आया महाभारत मेरी प्रसिद्ध होगी मेरे शास्त्र लोगों का लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर मैंने 4 वेदों को ट्रांसलेशन किया ब्रह्मसूत्र की रचना की कमी खटक रही भारत ने कहा कि अगर भागवत लिखो भागवत की रचना तो हृदय में पट ली मेरी आपकी भी श्रद्धा हो गई नारद जब गुजरे तो आर्य पाठ से नारद की पूजा की जिसने बूढ़े वेद व्यास जी ने उस लड़के की पूजा की और जैसे कैसे नहीं थे अपने जगह पे वो काफी थे जन्म से ही जंगल में चले गए मतगंडा के उड़ते हृदय से जन्मे थे पारापर ऋषि के पुत्र को भेज दिया नारद जी ने कहा कि मैं कैसे महान बना ये यदि पूछते हैं तो बताता हूँ कि अगले जन्म में मैं ब्राह्मण का लड़का था मेरी माँ ब्राह्मणी थी पिता बचपन में मर गया किसी के घर की रसोई का विधवा स्त्री का पुत्र माँ के साथ चला जाता था उस घर में पूरी सेवा दुहारी कर लिया वो सिर्फ संतों के पास जाता तो साथ में मैं को ले जाता फली खाने को प्रसाद देता एक बैठता संतों के नजीक मैं भी बैठता मैं बालक होने के नाते संत को प्रणाम करता बड़ा अच्छा लगता संत अपने हाथ से उठाकर पक्ष वाली प्रसादी मेरे को देते वो प्रसाद खाते मेरे पाप नाते फिर मेरे को कथा में रुचि होने फिर ध्यान में रुचि होने लगती तीसरी बात मुझे सिर्फ प्रकाश के दर्शन हो चौथी बात परमात्मा के लिए तड़प हो पांचवी बात मेरी आबादी क्षति होने लगी देश देखा करने छठी बात मेरा ब्रह्मचर्य पता हो क्योंकि वृत्ति सर उठे विश्व के केंद्र में होता कभी सेट पता था मैं सोचता हूँ कई बार कि लोगों को काम के सपने आते हैं और सपन दोष होता है मेरे कब्ज नहीं होता अब मैं खाने में कम नहीं रखता हूँ खाने की चीज मेरे पास कमी नहीं है खाने का तो पहले तो संयम से खाता था अभी तो जो बनाते जैसा बनाते चला हुआ भी खा लेता चला हुआ खाने तो नहीं चाहिए लेकिन उनको कभी कभी शौक होता है किसी को कुछ बनाते आता तो बस खा फिर भी हमारे को कभी ऐसा सपना नहीं आया कि पत्नी के साथ बात कर रहा हूँ तैयार कर रहा हूँ आलम कभी सपने तो आ जाते कभी कभी लेकिन उस प्रकार का सपना नहीं सच कर रहा हूँ मैं सच देख रहा हूँ मैं सच की रुचि पैदा होती कभी नोट करता हूँ जब देखता हूँ तो देखता हूँ जरूरत यही दे उनसे हो तो जाएगा उनसे मन जाता है कभी यही चाहता कभी तो जान बुझ के भी असंयम करता जैसे मैं जानता हूँ शरीर के नियम भोजन के बाद दो घंटे के बाद सोना चाहिए, तड़ा तड़ा के खाना चाहिए, काटते खाना चाहिए, तलाव नहीं खाना चाहिए। मैं ठीक रह जाऊँगा और नहीं भी खाता। और कल आपको बताऊं तो कोई दे गया था हलवा, वो बनता है बहुत ब्लिस्ट होता है, पिस्ते पड़े हुए, इलायची पड़ी हुई और जायफल पड़ा हुआ, कितना गर्म। और जान बूझ के कल और दो गोटी खाई जान बूझ के, मेरे को तो मीठा क्रिएशन का किस तरह का था। फिर ऊपर से दूध का एक गिलास किया और पूरा सपन दोष की व्यवस्था की। रात तक किया दो गोटी, होता नहीं देता कुछ क्या होता, मैंने जब खाली होता तो उसको भी नहीं होता। नारायण की मम्मी तो वहाँ रखी, हम तो गोरखवाड़ा थे, भावनगर थे, और कई महीने का वर्ष हो जाते हैं। अब चली बात है, बैठ जा, पर्चा भी लगेगा। चली बात सुनो, वहाँ जाती होगी गाड़ी तुम्हारी। ये बात पूछी थी चैतन्य महाप्रभु से कि जो लोग पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ऐसे ऋषियों को भी विकार आए और पतन हो गया। आप तो सुबह बाल भोग, दोपहर तक ठाकुर जी का प्रसाद, रात को भी प्रसाद, दूध मक्खन मलाई खाते हैं, ठाकुर जी का भोग भोग करते, आपकी क्या हालत हो गया? पलड़ खादे जो मार पे तो गिर खादे क्या हुए? रुके पत्ते खाने वाले का तो ये हाल, बड़े बड़े ऋषि का पतन, तो तुम माल मलिदा खाते तो तुम्हारा क्या हाल हुआ? उस गौरांग ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार उस प्रसिद्ध संत ने चिट्ठी भेजा, गौरांग कोई जवाब नहीं। वो सब सत्संग करते थे, ऋषियों के आगे बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु घूमते घामते जुतियों में आके बैठ के पीछे तो संत की नजर पड़ी कि चैतन्य स्वयं आए। आदमी को भेजा तो महापुरुष ने संत बुलाओ, आदमी गया बोले आ जाओ, चालू सत्संग हो रहा है। सत्संग के आगे हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं, ईश्वर की चर्चा है वहाँ व्यक्ति साधित। अच्छा, हम अपनी जगह पे जो भी हैं सत्संग में हम दासानुदास बैठ। दूसरा भगत को भेजा फिर भी नहीं उठे, सत्संग पूरा हुआ तो संत स्वयं गए चैतन्य के पास। संत थे अच्छी मूर्ति, उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु मैंने आपको दो चिट्ठियां भेजी और मुझे शंका थी कि जो लोग पत्ते खाते थे, रूखा सूखा खाते थे, उनको भी विकारों ने नहीं छोड़ा। तुम तो सुबह मक्खन मिश्री, ठाकुर जी का बाल भोग, दोपहर का भोजन, रात को खीर रबड़ी, तुम्हारा क्या हाल है? चैतन्य महाप्रभु ने हाथ जोड़े, हम होते तो हाल होता, अब हम नहीं है तो वही वो। मैं विनती करूंगा, बकरा जो है ना सूखे पत्ते खाता है, हरी घास खाता है, अति सात्विक है, वनस्पति खाता है और बहुत कामी होता है। दिन में 40 बकरियों को बच्चा दे सकता है, 40 बार सेक्स में सफल हो सकता है। सेक्स तो शायद ज्यादा बार कर सकता होगा, 40 बार वो सफल हो सकता है, 40 बच्चों को एक ही दिन में जन्म गर्भदान कर सकते हैं। और कबूतर सूखी ज्वार खाता है और बड़ा कामी होता है, और शेर का मांस भक्षण होता है और जीवन में एक बार सब
जब तक आदत नहीं होती और जब तक मनुष्य सबसे जन्म नहीं जाता तब तक उससे बेचारे को बहुत बहुत करना पड़ता है, और उसके बाद भी शांति और तसल्ली नहीं होती। जैसे भी आई चैतन्य महाप्रभु की बात गौराम की, गौरांग से बात आई है जैसे तो आदमी नहीं थी, न्याय शास्त्र पढ़े हुए थे, शिष्य परेशान के शास्त्र में विद्वान थे। काशी में बड़े बड़े विद्वानों को मैंने शास्त्रार्थ में प्राप्त कर लिया था, फिर भी जीवन में देखा कि दान है, सफलता है, रावण है, कपूर है, फिर कुछ खालीपन महसूस होता था। छोड़ दी विद्वता, छोड़ दिया शास्त्र, ये करताल आत्मे और सड़कों पर निकल पड़े, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कीर्तन करते करते अपना अभिमान, अपनी विद्वता, अपना पद प्रतिष्ठा भूल जाते थे। जब आदमी अपना पद प्रतिष्ठा और अहंकार भूल जाता है, तब वो सुषुप्त ईश्वरीय शक्ति उसके रुए रुए द्वारा नाचने लगती थी। शेक्सपियर बड़ा विद्वान था, उसका नकारात्मक जीवन था। विदेशी लोग प्राय उसको जानते, भारत के लोग भी जानते शेक्सपियर को। उसने जब उपनिषदों का अनुवाद पढ़ा शोपेनहावर, तो उपनिषद सिर पर लेकर सड़कों पर नाचा हुआ आदमी। शेक्सपियर कहते हैं कि जिस आदमी के जीवन में कीर्तन नहीं है, जिस आदमी के जीवन में ईश्वरीय नृत्य नहीं है, जिसके जीवन में ईश्वर चिंतन करते हुए मालिक के गीत गाते हुए हृदय पिघलता नहीं है, वो आदमी पापी होना चाहिए, छली होना चाहिए, दंभी होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए। पहले में कहीं भी थोड़ी बहुत सरलता होगी तो ईश्वर के लिए उसका भाव पैदा हो जाएगा। तुमने देखा होगा कि वो काका आप बगीचे में बैठे जाके पड़ा, प्रेम रस नहीं है, उसको बहुत सारे रस लेने पड़ते हैं। जिसके जीवन में भीतर का प्रेम रस प्रकट नहीं होता है, उसको बहुत सारे रस लेने पड़ते हैं। और बहुत सारे रस पर भी उसके जीवन की पूर्णता नहीं होती। बहुत सारे रस मिल भी गए, फिर भी जीवन की पूर्णता नहीं होती है। भीतर का प्रेम रस मिल गया और फिर और रस नहीं मिलते, तो भी वो आदमी अपने आप में पूरा है। पुरानी एक कहानी है, बौद्ध के जमाने की। किसी गांव में, छोटे से गांव में एक आदमी पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो आदमी को सारा गांव परेशान था, वो आदमी कमाता न था, किसी को कुछ देता न था, किसी से मिलता न था। भूख लगती तो लोग उसे रोटी दे आते, खा लेता, मुंह में डालते तो चबा लेता। और यदि किसी दिन कोई रोटी न डाल दे तो बोलता कि अंधे है, मूर्ख है, बेवकूफ है, नादान है, अनसमझ है, लोगों को डांट देता। आंधी आए, तूफान आए, तो लोगों को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। वो अपने शरीर की कभी संभाल नहीं लेता था, कोई सेवा ना करें तो बड़बड़ाता था, तो दूसरों को पता ही नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं, बादार हैं। लोग बड़े परेशान हो गए कि अजीब आदमी, कभी आशीर्वाद भी नहीं देता, कभी धन्यवाद भी नहीं देता, साधु है कि गृहस्थी है, हिंदू है कि मुसलमान है, मठाधीश है कि जेब कट्टा है, कोई परिचय तो नहीं, पूछते हैं तो बताता भी नहीं कुछ। तो जहाँ गांव होता है वहाँ सब किस्म के लोग होते हैं, और कली काल में तो दूसरों की गलतियां और दूसरों को नीचे दिखाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, दूसरों के गुण ढूंढने वाले लोग कम होते हैं। अफवाह फैल गई कि आदमी को सुचित्र है, इससे कोई लाभ नहीं, गांव को मुफ्त का खा रहा है, आराम का खा रहा है, कुछ करता ही नहीं। दुर्भिक्ष आया, लोगों ने देखा कि अपना रोजी रोटी भी मुश्किल है, अब इसको क्या खिलाना, गरीब भोले भाले लोग इसको खिला के आते, इसका सिर भर अनाज नाश होता है, इसको जिंदगी बाहर के आओ। गए कुछ लोग, कहा के तुम किसी काम के नहीं हो, जीते हो तो भी हमारे गांव के किसी काम के नहीं, और एक दिन तुम्हारोगे तो हम चाहते हैं कि तुम्हें जीता जीत गाड़ दें, तो आपको कोई हानि है, आपको कुछ करना बाकी तो है नहीं, तुम्हारे पास न पत्नी है, न बच्चे हैं, न कुछ करते हो, न किसी को कुछ देते हो, न कोई मेहनत तुम्हारे जीवन में देखी गई, बस पड़े हो, इतने महा आलसी होकर पड़े हो, तुम्हारा जीना व्यर्थ है और वैसे भी तुम मरना है तो हम तुम्हें जीते जीदार के आ तुम कुछ ऐसे चंद लोगों ने सुझाव रखा। और मैं पता ही नहीं था कि आदमी हराजी हो जाएगा। उसने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ लेकिन उठाकर तुम्हें ले जाना पड़ेगा, भगत तक मैं नहीं आऊंगा। जैसे मुर्दे को उठा के पहुंचा देते हो ऐसे मुझे पहुंचा दो गाड़ दो तो कोई हरकत नहीं, मैं सहमत हूँ, वैसे घर जाना है। लोगों ने तैयारी की, चंदा लोग थे उनके लिए मजाक थी, काई बाई घर आयो ठाकड़ी और आदमी को सुला दिया, नहला दिया, सुला दिया। बस जैसे मुर्दे को सब कुछ करना पड़ता है, मुर्दे को नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, रस्सी बांधनी पड़ती है, मुर्दा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता, बस वो ऐसा मुर्दे की नहीं, कोई हिलावे तो हिले, हिलावे तो सोए, बांधा तो बांध लिया और राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, खुदा हाफ करते करते गए। अध रास्ते पहुंचे होंगे गांव में, कोई अजनबी आदमी आया था, उसने बात सुनी कि जिंदगी आदमी को देखो ठाकसी में ऐसा ले जाए, आदमी को कौतूहल और उसने कहा कि नीचे उतार दर्शन करना चाहता हूँ। आदमी राजी कैसे हो गया, जीते जी इसी प्रकार मुर्दे जैसा राजी कैसे हो गया। हारती तो आराम से रहता है, चिल्लाता भी नहीं, प्रतिक्रिया भी नहीं करता है, बात क्या है जरा ये आदमी को देखना होगा। कोई बाहर गांव से आया था, कोई तालुके से आया था, उस अजनबी आदमी ने निहारा, देखा ढांचे खुली, आदमी तो जिंदा है। और जो बात सुनी थी कि जिंदे आदमी को गाने लिए जा रहे हैं तो सच्ची बात थी। उसने कहा कि छोड़ो इसको क्यों गाते हो, लोगों ने कहा कि आम का खाता है, मुफ्त का खाता है, खिलाने को है नहीं हमारे पास, और न खिलाएंगे तो ये भूखा रहे और हम लोग खाए, हमें अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए इसको तो समाप्त कर ही देना है। उस आदमी ने कहा कि देखो जी इस बेचारे को छोड़ दो, तुम आर्थिक से कुछ दो पांच कदम दूर जाकर लोगों को इकट्ठा करके कहने लगे कि इसको छोड़ दो, साल भर का अनाज का खर्च मैं दे देता हूँ। तब आरती में सोया हुआ उस व्यक्ति ने कहा कि खबरदार रहना, साल भर का अनाज तो वो दे देगा लेकिन पूछना सोया हुआ साफ किया हुआ पिसा हुआ होगा कि पिसाने की मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी जल्दी मत बन जाना। तब अजनबी आदमी आया, देखता है कि तुम अजीब आदमी हो, इतना बोल भी सकते हो, अनाज का शब्द भी समझ सकते हो, इतनी तुम्हारे में समझ भी छिपी, लेकिन तुम अर्थी पे उठाए नहीं जा रहे हो और बोलते नहीं, प्रतिज्ञा नहीं करते हो। साल भर का मैं अनाज देता हूँ, अब अनाज साफ किया हुआ हो, पिसा हुआ हो, दला हुआ हो, इतना भी तुम जानते हो। तब उस मुर्दे वेशधारी फकीर ने कहा, कोई सूफी फकीर था, उसने कहा कि तुम्हारे को जरा समझने की शक्ति है, तुम मेरी आंखों में देख सकते हो, मुझे थोड़ा समझ सकते हो, इसलिए बात बताता हूँ कि जिस शरीर को एक दिन जला देना है, जिसको कब्र में गाड़ देना है, उसके लिए करने को मेरे पास कोई फुर्सत नहीं। ये लोग मुझे आलसी बनाते हैं, आलसी कहते हैं, लेकिन मैं कीर्तन नृत्य जप तप करके उस राज को समझ चुका हूँ कि ईश्वर के सिवा खुदा के सिवा, खुदा की बंदगी के सिवा, खुदा की मस्ती के सिवा और कोई चीज संभालने जैसी है नहीं। ये मूर्ख सुबह से शाम तक घर को संभालते, मकान को संभालते, संपत्ति को संभालते, इज्जत और आबरू को संभालते, शरीर को संभालते, लेकिन सब कब्र में दफनाया जाएगा। अब उनको पता ही नहीं, मुझे तो दफना देते लेकिन वहां हम मिलेंगे तब पता चलेगा कि किसने संभाला, कौन आलसी और कौन क्रियाशील है। जो संभालने का वो मैं संभालता हूँ, शरीर को गाड़ दो तो क्या फर्क पड़ता है, शरीर के लिए समय देने को मेरे पास कोई समय नहीं है, क्योंकि जिसको तो संभालना है उसी को संभाल रहा हूँ और जो छोड़ना है मैं पहले से छोड़ चुका हूँ। भी आदमी ने देखा भी होगा, कोई सूफी फकीर दिखता है बड़े महान दिखते हो, बोले महान दिखना, छोटा दिखना, बड़ा दिखना, ये तुम्हारी भावना के अंदर है। मुझे तो जब से गुरु की कृपा भी मिली, गुरु की कृपा मिली, तब मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे को आलसी कह रहे हैं, लेकिन इनको पता चले कि अपनी घर के और अपने घर को संभालने के लिए इनने कभी एक दिन भी नहीं निकाला। आलसी कौन है इनको पता चल जाए कि युगों से जन्मते आए हैं मरते आए हैं अपने घर की ओर एक कदम भी नहीं रखा। आलसी तो खुद है अपने घर की ओर माना आत्मा की तरह, अपनी ओर तो कभी आए नहीं और जो छोड़ जाना है उसको उसमें लगे हैं। तो आलसी तो ये है और ये सब मिलकर मुझे आलसी कहते हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं आलसी नहीं हूँ, आलसी तो तुम हो कि जीवन भर व्यर्थ चीजों में समय गंवा रहे हो और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। तब वो जो भिखारी को तुच्छाधीनहीन समझ कर कदर में पहुंचाने की तैयारी में थे उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। आज मैं भी आदमी चरणों पर गिर पड़ा ताकि तो कुछ छुपे हुए महान संत है जिसने उस भीतर के संगीत को जान लिया, जिसने भीतर के रस को जान लिया उसको फिर बाहर का जगत निसार दिखता है। किसी को जेल में डाल दो या किसी को एक कमरे में पूर दो तो परेशान हो जाएगा, लेकिन जिसको भीतर का कमरा मिल गया है उस वो अपने आप कमरे में गुफा में बैठा रहेगा, बाहर आने की उसे रुचि नहीं होगी। तो दो घंटे रस आ गया ईश्वर का तो फिर और तीन घंटे चार घंटे छह घंटे बारह घंटे एक दिन दो दिन चार दिन ऐसे ऐसे भी ऋषि बैठे हैं, ऐसे ऐसे भी मुनीश्वर बैठे हैं जो लोगों से मिलने की रुचि नहीं करते फिर भी लोग आ जाते हैं जरा मिल लेते हैं, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि लोगों से मिलने के बाद भी जो मिलेगा वो सब नश्वर होगा। लोकेश्वर से मिले मजे की बात है कि जो लोकेश्वर से मिल लेते हैं उनको लोग मिलने को भी आते हैं और उनकी आज्ञा भी पालते हैं, उनके दर्शन करके लोग कृतार्थ भी होते हैं। और जो लोकेश्वर से मिले बिना लोगों से मिलने की कोशिश करता है उनको लोग मिलते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर जी कहते हैं एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। तो मनुष्य अपने घर की ओर जितना कम है उतना उसको बाहर की क्रिया बाहर का व्यवहार बाहर का सुख दुख ज्यादा चोट करेगा। अगर मीठे फल खाएंगे और होगा मीठा फल उसको खट्टा समझ के भी लोग मुंह चला देंगे। बंगलो श्री राम असाजे बंगलो पहनो है, अरे तुमने बंगलो पहनो वाली खा जो थे। कोई बोलता है हमारा झुपड़ा है, कोई बोलता है हमारा बंगला है, कोई बोलता है हमारा मकान है, कोई बोलता है हमारा दुकान है, कोई बोलता है हमारा ये है। तुम्हारा बंगला नहीं है, बंगला तो अपने आप का ही नहीं है, वो पंजे पान दे कौन है तो पंजे वाली कथा तीनों श्री राम। वो अपने आप का ही मित्र नहीं है, अपने आप का ही वो अपने आप को ही नहीं समझता। ये मंगलो मंजुआ है, दुकान मंजुआ है, मोटर मंजिया है, गहने मेरे हैं। अरे गहनों ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारा हूँ, जब जब कहा तुम्हारी कल्पनाओं ने कहा ये फर्नीचर हमारा है, ये बंगला हमारा है, ये मकान हमारा है, ये कार हमारी है। कार ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हूँ या तुम हमारे हो। तो मनुष्य अपना बंगला मानता, बंगले को खबर नहीं कि मैं बंगला हूँ श्री राम, झोपड़े को खबर नहीं मैं झोपड़ा हूँ। समझे था ना, समझने वाला समझे ना, बंगले से खबर कहने में बंगलो है, झोपड़े को खबर नहीं मैं झोपड़ा हूँ। जब जब कहा कि मेरा झोपड़ा है मेरा बंगला है तो बंगला मेरा मानते हो झोपड़ा मेरा मानते हो, लेकिन वो छुपा हुआ जो यार है उसको कभी तुमने कहा कि मेरा है परमात्मा मेरा है मैं परमात्मा का हूँ उसको कभी नहीं देखा। जब जब देखा तब कब्रस्तान को देखा जो कब्र में मिल जाएगा मिट जाएगा गल जाएगा सड़ जाएगा उस मकान को बोलते हमारा है। जो गहनों को छोड़ कर चला जाना है उस गहनों को बोलते हमारा है। जिस शरीर को एक दिन कब्र में दफनाना है उसको बोलते हैं कि मैं हूँ। और जो कभी नाश नहीं होता उस आत्मा को कभी देखने के लिए समय नहीं निकाला। तो इन आलसी लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, मैं यदि जीते ही भी कब्र में चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है। और ये मर के भी कब्र में गए तभी भी बेकार है और जी के भी गए तो बेकार है क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन बेकार में व्यतीत किया है। वो प्रवचन उपदेश ये वो दे जाके कर करा के फिर डूबते जाते हैं, विशेष डूबते जाते हैं, डूबते समाज में आते हैं समाज से फिर डूबते हैं। लुणावाड़ा है इधर ऐसा एक फकीर था, वो राजा का गुरु था लुणावाड़ा गोधरा के पास। की करीब की बात होगी, मैंने सुना उनका नाम कि वे एक ऐसे हैं पहले सम्राट के गुरु थे, ब्रह्मसूत्र पर कथा करते थे, वेदांत का सत्संग सुनाते थे, एक बार अमेरिका जाते आए थे, इंग्लिश भी जानते थे। प्रतिदिन राजा का रथ आता है लुणावाड़ा का, और रथ में ऊंचे सिंहासन पर आरूढ़ होकर राजा के घर को जाते महल में, और वहां उनका सिंहासन बना रहता है, उस सिंहासन पर बैठकर राजा को, राजा के और दो चार साधकों को, मित्रों को ब्रह्मसूत्र की उपनिषदों की सब कथा सुनाया करते थे। अब राजा का गुरु होने के नाते भीड़ बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, देखा कि समय बहुत जाता है, अब क्या करूं। आश्रमवासियों को कहा कि मुझे अब सत्संग करने नहीं जाना है, राजा को बोल देना, राजा के रथ वालों को वापस कर देना। लोगों ने कहा कि महाराज आप राजा के वहां जाते हैं इसलिए तो आश्रम भी चल रहा है, इतने साधु भी पल रहे हैं, इतना समाज का सेवा भी हो रहा है, ये आप क्या करते हैं आप।